நமோ சப்பூரம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோகன் மங்களம் குந்த குந்தாக்கியோ ஜெய தர்மோஸ்கு மங்களம் சர்வ மங்கள மங்களம் சர்வ கல்யாணகாரகம் கிருதானாம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயம் ஜெயது சாஸ்தினி ஜெயம் ஜெயது சாஸ்தினி ஜெயம் ஜெயது சாஸ்தினி भुवन में सार वीतराग विज्ञानसार शिव स्वरूप शिव सार नमो के योग समारिथे। पंडित दौलत राम जी की छेड़ाला की दूसरी डाल पर हम लोग व्यवहार समय दर्शन के स्वरूप पर बात कर रहे थे, और लास्ट टाइम हम लोगों ने समय के 8 अंग और 25 दोष इनके नाम देख लिए थे एक बार, और उसके बाद शंकादि 8 दोषों के जो उल्टे हैं, 8 अंग में शंकित आदि, उन पर हम लोग चर्चा शुरू कर रहे थे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, किसी को कोई डाउट इसमें मुखर पर थे। 11वां छंद था वसु मदकारी निवारी त्रिशस्ता शतनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो। तो 8 मद होते हैं, 8 प्रकार के मद होते हैं, और 3 प्रकार की मूढ़ताएं होती हैं, षटता, और 6 प्रकार के अनायतन। तो 8 + 3 = 11 + 6 = 17, और शंकादि 8 दोष होते हैं, तो 17 + 8 = 25। ये सम्यक्त्व के 25 दोष हैं। मतलब सम्यक दृष्टि जो होता है उसको ये 25 चीजें नहीं होती हैं, या फिर जिसको ये 25 दोष होते हैं वो बाहर से उसके रफ रफ हमारे पास प्रोफेशन है कि इसको सम्यक्त्व नहीं होगा, राइट? जिसके पास घमंड है, मान है, ह्यूमिलिटी नहीं है, विनय नहीं है, तो उसको सम्यक्त्व नहीं होता। जिसके पास को गुरु को देश को धर्म संबंधी कोई भी इंटरेस्ट पाया जाता है, वो थोड़ा भी उनमें इंटरेस्टेड है, वो नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि। जो उनके स्थानों पर रुचि रखता है, वहां जाने की रुचि रखता है, उसमें डाउट है, 5 सम्यक के पहलू है उसके लिए। ठीक है, 25 दोषों के नाम हो गए 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 दोष। ये टोटल मिला के 25 दोष हैं जो सम्यक दृष्टि को नहीं होते। तो इनके अपोजिट क्या रहते हैं उनको, कि उनको संवेगाधिक 4 गुण होते हैं और 8 अंगुण सम्यक दृष्टियों के पाए जाते हैं। ठीक है, संवेग आस्तिक की अनुकंपा और प्रशम। ठीक है, तो हम यहाँ से आज से 8 अंगों का डिस्कशन शुरू करते हैं, जो उस टाइम भी हम लोगों ने किया था। 12वें नंबर का छंद है, दिनवच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिना वे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर औगुण धाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामाधिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे धर्मी सौ गौवच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दिखावे इन गुण तय विपरीत दोष वसु तिनको सतत छिपावे। ओके, आप लोग को आवाज आज क्लियर आ रही है, राइट? हेलो हेलो हेलो, आप
हाँ नंबू जी,
सबको क्लियर आवाज आ रही है, राइट?
हाँ मुझे तो क्लियरली सुनाई दे रहा है, बाकी सबको भी आई थिंक।
हाँ क्लियर है, क्लियर
क्लियर
ओके ओके। ठीक है, सो क्वेश्चन, जिन वच में शंका न धार, जिनेन्द्र देव के वचन में शंका नहीं होती, जो सम्यक दृष्टि होता है उसके जिनेन्द्र देव के वचन में डाउट नहीं होता, शंका नहीं होती, वो उसमें निशंक होता है, राइट? जैसे कि अभी हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स बहुत इजीली इंस्टिल किए जा सकते हैं। कोई भी चीज़ अभी यहाँ पर कुछ डाउटफुल बोल दूँ, आप लोग बहुत अच्छे से डिलेमा में शायद आ जाएं, राइट? सी, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है यदि हम प्रेजेंट डे की ज्योग्राफी और साइंसेस को मान लेते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि अर्थ सच में एक प्लेनेट है जो कि पूरा गोल गोल और इधर उधर घूम रहा है, ओके? एंड जस्ट गिविंग यू स्मॉल हिंट कि ये कितना डाइसी हो जाता है यदि हम एक भी चीज को सही तरीके में नहीं समझ पाए तो, ओके? व्हाट इफ वी बिलीव दैट, ओके, वी आर रियली लाइक रियलिटी में यदि हम किसी प्लेनेट पर हैं जो कि अर्थ नाम का एक प्लेनेट है जो इतना बड़ा है जहाँ 7 कॉन्टिनेंट है और समुद्र है बाकी सब, इफ वी गिविंग टू दिस सिंपल फैक्ट, ठीक है, यू नो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि जो हमारा टोटल का मध्य लोक है जिसमें असंख्या द्वीप समुद्र है उसका पूरा कॉन्सेप्ट गोज ऑन अ टॉस, लाइक गोज फॉर अ टॉस, उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। प्लस फिर हमारे नंदीश्वर द्वीप जो अष्टानिका पर्व आएंगे, हमें नहीं पता है सर हम किस चीज की पूजन कर रहे हैं। वो अष्टानिका पर्व के लिए 8वां द्वीप है भी कि नहीं है, कि हमारा तो जम्बू द्वीप ही नहीं रहा, हम तो कहीं हवा में तैर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो,
फिर से बताइए।
मैं सिंपल से एक ये बोल रहा हूँ, जिन वच में शंका ना धार, जिनेंद्र देव के वचनों में शंका नहीं होनी चाहिए। बट देन अगेन यदि हम बहुत क्लोजली माइन्यूटली आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ जो डिटेलिंग हमको मिली है हम उसको देखते हैं तो जो वो कंक्लूड किया जाता है, तो क्या कंक्लूड किया जाता है कि सी जो अर्थ आप देख रहे हो दिस इज अ ग्रेट पूरा एक स्फीयर है, एक बहुत बड़ी बॉल है, राउंड, इट्स अ कंप्लीट राउंड बॉल, राइट? और ये एकदम सन के आजू बाजू घूम रही है अपनी, उसमें उसका टोटल फिक्स साइकिल है 365 डेज अ ईयर इट टेक्स, राइट? उसका पूरा पूरा सब कुछ साइकिल है। इफ वी बिलीव दिस देन जो हम 3 लोग के नक्शे के बारे में पढ़ते हैं वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, राइट? क्योंकि हमें 3 लोग में जम्बू द्वीप के बारे में कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि यहाँ पर ज्योतिष विमान तो होते हैं, सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र प्रकीर्णक ये सब तो यहाँ ऊपर आसमान में होते हैं और वो घूमते रहते हैं, उनके विमान होते हैं, लेकिन अर्थ इटसेल्फ जम्बू द्वीप खुद थोड़ी ना कोई विमान है जो इधर उधर घूम रहा है, उसको तो हम बोलते हैं कि वो फिक्स फिक्स धरती है, राइट? यस और नो? हेलो, करेक्ट, वो तो फिक्स है। तो यदि अर्थ स्पेस में कोई एक घूमने वाली चीज या प्लेनेट नहीं है देन अर्थ क्या है? क्योंकि साइंस तो इसको नहीं मानेगा। सी देयर इज अ फ्लैट अर्थ सोसाइटी आल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। तो इंटरनेट पर ही दो वॉर बहुत ज्यादा चलते हैं, एक जो मानते हैं कि अर्थ राउंड है, ठीक है, पूरी की पूरी अर्थ गोल है, और दूसरे लोग हैं वहां पर जो मानते कि नहीं अर्थ इज अ फ्लैट, ये एकदम फ्लैट है अर्थ पूरी की पूरी। तो एंड दे हैव ऑल द डिबेट्स, तो वो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा अर्थ फ्लैट होती है, जो लोग साइंस को मानते हैं वो फ्लैट अर्थ को नहीं मानते, जो लोग फ्लैट अर्थ को मानते हैं वो बोलते हैं ग्रेविटी वगैरह ये सब कुछ बेकार है, अर्थ तो एक बिल्कुल प्लेट जैसा है, इट्स टोटल फ्लैट, राइट? आई एम जस्ट सेइंग कि यदि हम ये वाली बात जस्ट थोड़ा सा सोचें कि यदि अर्थ, व्हाट इफ अर्थ इज अ प्लेनेट, क्या एक अर्थ एक यदि सही में ग्रह हुआ जिसमें हम रह रहे हैं, पृथ्वी एक पूरी की पूरी गोल ग्रह है, देन जो हम साल में 3 बार मनाते हैं 8-8 दिन के लिए अष्टानिका महापर्व, अच्छा अष्टानिका पर्व क्यों मनाते हैं हम? अष्टानिका पर्व क्यों मनाते हैं? हेलो,
वो तो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं ना, जब भी देवलोक जाते हैं वहां तो
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है? यहाँ से एट्थ द्वीप है, राइट, आठवां द्वीप है,
बराबर लास्ट वाला।
बराबर। अभी हम किस द्वीप में? हम जम्बू द्वीप में हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमको जम्बू द्वीप समझाया जाता है तीन लोक में, उसमें तो कहीं पर ये प्लेनेट अर्थ की बात नहीं आती कि एक हवा में गोल गोल चक्कर काटता हुआ एक गोला चल रहा है जिसके आजू बाजू फिर चंद्रमा उसकी परिक्रमा दे रहा है, एक सोलर सिस्टम है तो सन के अक्रॉस सारे ये के सारे लोग घूम रहे हैं, तो ऐसा तो हमको नहीं बताया जाता। करेक्ट इन जैन ज्योग्राफी, हमको तो ये बताया जाता है हम मध्य लोक में है और इसमें सेंटर में जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में हम लोग फिक्स जगह पर है, एक जगह भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र का कोई कोना है जिसमें हम है, राइट। सो इफ यदि हम थोड़ा भी प्रेजेंट साइंस के एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, एक बहुत बड़ा डाउट हो जाता है कि ये द्वीप और समुद्र है कि नहीं है, ये सचमुच तीन लोक है कि नहीं है, और ये द्वीप समुद्र नहीं होंगे तो नंदीश्वर द्वीप नहीं होगा, तो अष्टानिका पर्वत गोस फॉर अ टॉस। और क्या नहीं होगा कि जब ये मध्य लोक के द्वीप नहीं होंगे तो अधोलोक के नरक भी नहीं होंगे, ऊर्ध्व लोक के स्वर्ग भी नहीं होंगे, दैट ऑल्सो गोस फॉर अ टॉस। देन सबसे ऊपर शायद सिद्धशिला भी ना हो। अरे गेटिंग मी, डाउट्स कितना बड़ा जा सकता है। फिर शायद चार गति ही नहीं हो, सिर्फ मनुष्य और त्रियंश होते हो और उनके बीच में उनको गवर्न करने के लिए साइंस होती हो, रिलीजन जैसी कोई चीज ही ना होती हो शायद। हेलो,
हाँ जी, वो शंका होती है, बराबर।
एक चीज को यदि हम मानते हैं तो इतने सारे डाउट सामने उनकी लाइन लग जाती है, करेक्ट। पूरा का पूरा हमारा तो जो बाहर का हम जो बचपन से मनाते आए, साल में 24 डेज, 8 टाइम्स एट अ टाइम, 3 टाइम्स अ ईयर, राइट, अष्टानिका महापर्व, वही वाली कहानी हमारी पूरा एक फिक्शन बन जाती है, करेक्ट। फिर कई लोगों को डाउट होता है तो फिर ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, साइंस ठीक है कि जेनिज्म में ठीक बोला है, सचमुच तीन लोग का ऐसा ही चित्र होता है, तीन लोग ऐसे ही होते हैं, ये वाले क्वेश्चन सामने आने लगते हैं। सम्यक दृष्टि को सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्वों में शंका संदेह नहीं होता, उसको जो भी भगवान ने बोला है उस पर वो शंका नहीं करता। बट हमें तो शंका हो जाती है क्योंकि ये तो फिर गलत हो गया, डाउट हमने पूछा है और हमने आत्म करके बिलीव कर दिया कि भगवान ने जो बोला है जिन वचन में जो आया है उसको वैसा का वैसा मान लो, करेक्ट। सो नाउ यू टेल मी देयर इज अ बेसिक बैटल, एक बहुत बड़ा अंदर ही अंदर का इनर बैटल है कि हमको परीक्षा प्रधानी होकर हर चीज को एनालाइज करना चाहिए या फिर हमको ये पता करके, ये तो भगवान ने बोला है, हमको हर चीज को निशंक होकर बिलीव कर लेना चाहिए। वॉट शुड बी द राइट वे, क्या करें हम?
प्रयोजन भूत चीजें हैं उसकी परीक्षा करनी चाहिए और जो अप्रयोजन भूत है उसको मान लेना चाहिए, जो हम उसको जो हम नहीं कर सकते उसका मतलब प्रूव नहीं कर सकते, जिसको हम सूक्ष्म चीजें है
एक्सीलेंट,
उसको मान लेना चाहिए।
एक्सीलेंट। तो मतलब प्रयोजन भूत तत्वों में हम डाउट कर सकते हैं, उसमें हम शंका कर सकते हैं। हाँ, प्रयोजन भूत तत्वों में शंका करना अलाउड है, अब प्रयोजन भूत तत्वों में अलाउड नहीं है।
नहीं, मतलब वो हम वो परीक्षा करके हमको मानना चाहिए।
ओके ओके राइट। ये पंडित टोडरमल जी ने एग्जैक्टली जो आपने बोला है, पंडित टोडरमल जी ने बोला है कि पहले प्रयोजन भूत जो तत्व है, जैसे कि ठीक है पृथ्वी राउंड है कि नहीं है, अर्थ इज रोटेटिंग और रिवॉल्विंग अराउंड द सन और नॉट, ये सारी चीजों से मेरी डेली लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है, मेरे लिए तो 24 आवर्स पर डे चल ही रहा है, सूरज आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, दिन जा रहा है, हमारे सारे रूटीन्स तो चल रहे हैं। वेदर यू बिलीव द अर्थ इज फ्लैट, वेदर यू बिलीव इट्स अ सर्कल, आप चाहे ये मानो कि वो सूरज के आगे पीछे घूमती है, चाहे ये मानो कि सूरज मेरू के चक्कर लगाता है, वॉट एवर यू बिलीव, आप कुछ भी बिलीव करो, आपकी बेसिक लाइफ पर तो आपके इस बिलीफ का कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। करेक्ट, अर्थ के शेप से हमारे रोज का तो कुछ डेली लाइफ से इम्पैक्ट नहीं होती है, यस और नो? ऊपर 16 स्वर्ग है कि 17 है, तो 9 अनुदश 9 अनुत्तर है कि नहीं है, ये सारी चीजें वहां पर है कि नहीं है, 9 गृहजी 9 अनुदश 5 अनुत्तर विमान, ये सब है कि नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? अभी के लिए आपके मनुष्य जीवन में इससे कोई रेलेवेंस है क्या कि ऊपर 16 स्वर्ग है कि 17 स्वर्ग है, या फिर जो 3 लोग का शेप है वो ऐसा ही है कि कैसा है? इट रियली डज नॉट इम्पैक्ट हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे 7 नरक है कि 8 नरक है, राइट? क्योंकि एट प्रेजेंट हम ना नरक गति में जा रहे हैं, आज के दिन तो मैं नहीं हूं, यदि मेरी मृत्यु नहीं है तब तक ना मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा आज ना नरक में जा पाऊंगा, तो वो है कि नहीं है, उसमें जितने भी जीव हैं उनके सुख से मुझे थोड़ा सुख मिलता हो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो देर इज नथिंग, जो कुछ भी भगवान ने अपने कर्णानुयोग में बोला है, इवन इफ लाइक 8 कर्म होते कि नहीं होते हैं, वो 8 कर्म कैसे दिखते हैं, उनकी कितनी प्रकृतियां होती हैं, वो कैसे बनती हैं, ये वाली चीजों से आपका कुछ लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि आपको दिखने नहीं लगेंगे कर्म, और वो वाले कर्म इतने निःशुल्कों में उदीर्ण हुई कि नहीं हुई, संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ। सी इट इज अ गुड सब्जेक्ट टू नो अबाउट, बट इसको जानकर भी आप कर्मों को कंट्रोल करने लग जाओगे, दैट विल नेवर हैपन, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने कर्मों को जानो और आपको 8-8 कर्म दिखने लगे, राइट? वो सारी ऑटोमेटेड व्यवस्था है, वो तो आप जानो नहीं जानो कर्म तो बंध रहे हैं, उदय में आ रहे हैं अपने आप ध्यान दो नहीं दो, वो अपना काम कर रहे हैं, यस और नो? करेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हम इनको एक बिन में डालते हैं, उसको बोलते हैं आप प्रयोजन भूत, इमटीरियल, नो मैटर कुछ भी हो इनकी रियलिटी, ये हो नहीं हो, इनसे मेरी प्रेजेंट लाइफ इंपैक्ट नहीं करती है, राइट? ये ही एक कारण है जिसके कारण इस लोक में सबसे बड़ा धर्म पता है कौन सा है? कैन यू नेम द रिलीजन विच इज द बिगेस्ट इन दिस वर्ल्ड? हाँ,
आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए।
क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म कौन सा है?
इस्लाम
इस्लाम
सब, एवरीबडी अग्रीज, सबको?
क्रिश्चियनिटी
हाँ, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, नीदर, इन दोनों में से कोई नहीं। सबसे बड़ा रिलीजन है एथीज्म, सबसे ज्यादा लोग नास्तिक होते हैं, वो ना किसी, वो सबसे बड़ा धर्म अधर्म है, मतलब जिससे कोई फॉलो नहीं करे, इसको हिंदी में बोलते हैं चार्वाक मत, जिनको कोई लेना देना नहीं है क्या भगवान है कि नहीं है, हमें क्या करना कि नहीं करना, व्हाट डू वी डू व्हाट डू वी नॉट डू। मोस्ट ऑफ द पीपल इन टुडेज वर्ल्ड, जो यंग जनरेशन आ रही है, दे आर नॉट इंक्लाइंड टू वर्ड्स रिलीजन, एनी रिलीजन, दे फील प्राउड टू कॉल देम सेल्फ एथीस्ट, राइट? इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी,
या
राइट? तो व्हाई दे आर एबल टू डू सो, धर्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा है नेचर, आप जो कुछ भी करें ये कर्म आपको डिस्टर्ब नहीं करने आते, कर्म आपको दिखते नहीं है, 4 गतियां आपको दिखती नहीं है, आपको तीन लोक में क्या चल रहा है ये कुछ दिखता नहीं है, तो लोगों की प्रेजेंट लाइफ को ये सब इम्पैक्ट ही नहीं करता। कर्म करेगा भी तो अभी का कर्म कुछ नहीं करता। सो दो दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग्स राइट नाउ, दो दे आर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड यू नो हार्मिंग देयर लंग्स एंड देयर लीवर, देयर डैमेजिंग देयर होल बॉडी, लेकिन अभी कर्म का उदय तो नहीं है राइट। अभी उनका सब सही चल रहा है, उनको फिट रहना है, तो वो जिम भी जा रहे हैं, वो स्मोक भी कर रहे हैं, वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, दे आर टेकिंग।
परंतु उन लोग उदय तो कर्म का आता ही है हर समय, परंतु उन लोग वो कर्म का उदय आता है वो देखते नहीं है,
नो नो नो
वो
नो
फिर
नो नो
उनको पता नहीं है।
सी सी लिसन लिसन, उनको कर्म का उदय आता है, दैट इज गिवन, ठीक है, बट उनको जो वो अभी कर रहे हैं ना उसका उदय नहीं आता अभी।
हाँ वो
अरे
बराबर है,
दैट,
वो बराबर है, या
हाँ, सो द क्वेश्चन इज कि वो एथिस्ट क्यों है, वो लोग नॉन बिलीवर्स क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास, मेरे पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि मैं रोज भगवान का प्रक्षाल करने मंदिर जाता हूँ तो उसका मैं अपनी लाइफ पर कोई डायरेक्ट बेनिफिट बता पाऊँ आपको। तो आप ये भी चाहो तो आप मजाक बना सकते हैं, ही इज इमोशनल फूल, इसको बोला हुआ है पागल, रोज सुबह जल्दी उठ जाता है और भगवान एक मूर्ति है पत्थर की और उस पत्थर को जाके उसके सामने झुकते हैं और उसका अभिषेक करते और खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। पीपल कैन ब्लेम यू फॉर दैट एज वेल, कैन दे नॉट, वो कर सकते हैं राइट।
या देखिए,
आप पत्थर को क्यों, आप पत्थर तो यार इससे अच्छा है, पत्थर की इतनी पूजन करते हो, उनको चावल चढ़ाते हो रोज, इससे अच्छा किसी गरीब को दो, उसको खाना मिलेगा एटलीस्ट। वॉट इज दिस, एक मूर्ति के सामने जाकर झुक जाना, ये कोई विजडम वाली बात है? तो पीपल विल ऑलवेज टेल यू दिस राइट, ये वाले लॉजिक सारे सामने आएंगे हमेशा। व्हाई डज इट हैपन, बिकॉज इट्स अ ट्रिक, ये एक पूरा बहुत बड़ा जाल है, इट्स अ ट्रैप। तो जो रियल आपके प्रेजेंट आपके जो भी एक्शंस होते हैं उनका इमीडिएट आउटकम मोस्ट केसेस में नहीं देखा जाता है, रेयरली वो केसेस में वो वाली आउटकम देखी जाती है, यस और नो, ठीक है। तो कोई बहुत बुरा काम कर रहा है, दे आर हर्टिंग एनिमल्स, वो हंटिंग पे जाते हैं, इतने सारे होते हैं, वो फिश हंटिंग करते हैं राइट, तो फिश को पकड़ते हैं, वो रोज सप्लाई करते हैं, इतनी सारी फिशेस को मारते हैं, एक बार में एक दो फिशेस को लेके नहीं आते हैं, वो बड़े बड़े शिप्स लेके जाते हैं, पूरा नीचे तक नेट लगाते हैं और एक बार में करोड़ों फिशेज एक साथ उनके नेट पर आती है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फिशेज एट वन गो, यस और नो, होता है ऐसे ही होता है राइट।
हाँ,
तो उनको पाप कैसा धीरे वाला पड़ता होगा, उनको कम पाप पड़ता होगा, माइल्ड पाप पड़ता होगा, नो, उनको पाप पड़ता है, बहुत अच्छे वाले कर्म तो नहीं बनते होंगे उनको, उनको इतने सारे संगी पंचेंद्री जीवों की हिंसा का पाप लगता होगा राइट, लगता होगा ना इस कर्माधार से, बट
हाँ
उनकी तो उससे इनकम हो रही है, उनको तो उससे पैसा मिल रहा है, दे आर गेटिंग अ लिविंग। तो सी कितना बड़ा ट्रैप है, फाइन, आप जो काम कर रहे हो उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि वो पैसे आपको उस काम को करने से नहीं मिल रहे हैं, वो आपका जो पास्ट कर्म है उसके कारण मिल रहे हैं, लेकिन वो पास्ट कर्म रिजल्ट कब दे रहा है, जब आप प्रेजेंट में बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तब पुराने पुण्य का उदय आ रहा है, तो आपके पास यहाँ सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है कि ये जो मैं बुरा काम कर रहा हूं इससे रिजल्ट बुरा होगा या अच्छा होगा, क्योंकि दिख तो अच्छा रहा है।
परंतु इन लोग तो यही समझते हैं ना, ये तो हमको अभी गुरुदेव को सुने तो इसलिए हमको पता लगा कि ये पैसा आया वो पुण्य के उदय से आया, परंतु इन लोग तो ये ही समझते हैं ना कि मैंने ये काम किया इसलिए मुझे पैसा मिला।
तो दैट्स व्हाट यहाँ पर पंडित दौलतराम जी यही कह रहे हैं कि ये उन लोगों की बात या हमारी बात ये नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी को ले रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं कि यदि वो सम्यक दृष्टि होगा तो उसमें क्या ट्रेट्स पाए जाएंगे, सीधी बात, ठीक है, तो सम्यक दृष्टि की ट्रेट्स से पाए जाएंगे कि उसको जिनेन्द्र देव के वचनों में शंका नहीं होगी, उसको डाउट नहीं होगा राइट, पहली चीज। तो पहले हम ये एनालाइज करना चाह रहे हैं कि जो डाउट होता है ये मोस्टली दुनिया में लोगों को धर्म पर अविश्वास क्यों होता है और why we have so many evidences against religion and क्यों धर्म हमेशा साइंटिफिकली प्रैक्टिकल लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, राइट? जो लोग बहुत ज्यादा साइंस में बिलीव करते हैं वो लोग बोलते हैं धर्म वर्म कुछ नहीं होता, इट्स ऑल साइंस, इट्स ऑल फिजिक्स, यस, इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री और एवरीथिंग.
ऐसे अपन हम लोग बोलते हैं, मगर वैसे तो उनका पॉइंट भी लगता है ना बराबर की, ऐसे जैन
फिलोसफी ये
तर्क
करेक्ट. जब उनके पॉइंट में लॉजिक लगने लगता है उसी समय हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं निशंकेपन तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है. ये इसलिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन वच में शंका ना धार, उनकी बातें अभी लॉजिकल लग रही है. अब हम देखते हैं ना उसको, दैट्स व्हाई वी आर एनालाइजिंग, हम इसलिए इसको समझ रहे हैं. आप समझिए ट्रैप क्या है. एक्चुअल स्टोरी इज दिस, स्टोरी ये है कि कर्म होते हैं, ये जिनेंद्र देव ने बोला, ठीक है, बोला उन्होंने, मैंने नहीं देखे आज तक ना, आपने देखे, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि कर्म जो होता है वो सूक्ष्म स्कंद होता है. स्कंद के 6 टाइप होते हैं, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म एंड सूक्ष्म सूक्ष्म, राइट? और हमको दिखने वाले तो सिर्फ 2 होते हैं, 3 होते हैं स्टार्टिंग के. हम ये बाहर का लकड़ी देख पाते हैं, वुड देख पाते हैं, फर्नीचर देख पाते हैं, वॉल्स देख पाते हैं, या हम वाटर जैसे लिक्विड देख पाते हैं, मिल्क देख पाते हैं, पेट्रोल देख पाते हैं, या फिर हम धूप देख पाते हैं, छांव देख पाते हैं, चांदनी देख पाते हैं, राइट? हम ये सारी चीजें देख पाते हैं. तो ये विजिबल 3 प्रकार के स्कंद होते हैं. इनविजिबल स्कंद कौन से होते हैं? हवा हम देख नहीं पाते लेकिन फील कर लेते हैं, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है. हम ये जो डिश बनी है आज खाने की कैसी है, हम उसको देख नहीं पाते उसका टेस्ट, बट हम उसको टेस्ट कर पाते हैं. आई कैन स्मेल द रोज, लेकिन हम उसकी स्मेल को देख नहीं सकते. तो चक्षु इंद्री के अलावा 4 इंद्री के विषयों को हम देख नहीं सकते, बट दे आर वेरी अपेरेंट, हम उनको भोग सकते हैं, राइट? हम चख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम शब्दों को देख नहीं पाते बट साउंड होता है, वो हम सुनाई देता है, राइट? तो 6 स्कंद में से 4 स्कंद तो वी कैन फील, वी कैन एक्नॉलेज, हम उनको देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, करेक्ट? बट 5th नंबर का जो स्कंद होता है वो होता है सूक्ष्म. उस कैटेगरी में आचार्य भगवान ने कर्मों को डाला, वो ना दिखते हैं ना महसूस किए, करेक्ट?
हाँ.
अब जो चीज दिखती नहीं है और महसूस नहीं की जाती उसका एविडेंस लेके आना और एविडेंस ढूंढना वो पागलपन है. जिस चीज का लेट मी टेल यू दिस, किसी इफ मेरे पास पूरी बहुत बड़ी लेबोरेट्री है, ठीक है, और इस लेबोरेट्री में हमको ये फाइंड आउट करना है, ये जो रोज की स्मेल होती है ना, ये रोज की स्मेल का शेप क्या होता है, राइट? रोज की स्मेल का शेप क्या होता है, तो कैसे, किस इक्विपमेंट से हम फाइंड आउट करेंगे कि रोज की स्मेल का शेप क्या होता है, बताइए.
वो तो पुद्गल है, तो पुद्गल का वो शेप
होगा ना. पुद्गल तो है लेकिन उसका शेप क्या होता होगा, किसी स्मेल का, टेस्ट का, ये डायमेंशन नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं. आप ये पूछ सकते हो कि उसकी स्मेल कैसी होती है, पॉइग्नेंट होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, माइल्ड होती है, सूदिंग होती है, आप ऐसा कर सकते हो. लेकिन ये उसकी स्मेल हार्ड, मतलब कैसा उसका टच होता है, वो दिखती कैसी है, उसका शेप कैसा होता है, ये उस स्मेल का डायमेंशन ही नहीं है. स्मेल को उस पैरामीटर पर जज ही नहीं किया जाता, उसके लिए वो इक्विपमेंट ही नहीं है उसको जज करने का. यस और नो? हेलो.
हाँ, वैसे वो विचार भी शायद ना भी आवे इसका कोई शेप भी होएगा कि
शेप तो होगा
नहीं, मगर विचार, मैं बोलती हूँ विचार के, वो विचार में वो विचार इतना पता नहीं लोग वो किसी को आता होएगा कि ये तो हम तो जिनागम में लर्न करते हैं उसलिए एक्सेप्ट किया है कि उसका शेप होएगा, परंतु जो
तो वो स्मेल पर ही रुक जाते कि हाँ ये स्मेल अच्छी के इसके जैसी के उसके जैसी के उसके जैसी, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती. सो आई डोंट नो whether they
वो सूक्ष्म है, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी देखेंगे तो भी वो दिखाई नहीं देगा, बट वो महसूस किया जा सकता है. राइट, आप क्या करोगे, चलो यहाँ पर स्मेल आ रही है, आप उस स्मेल के पार्टिकल्स को अपने टेस्ट ट्यूब में भर लोगे और फिर उसको जाके वहां पर एनालाइज करोगे. नो यू कैन नॉट डू दैट, वो आप नहीं करोगे. ठीक है, सिमिलरली ये जो कर्म है इनका वो क्या बोलते हैं, इनमें वो फैसिलिटी ही नहीं है कि इनको आप पकड़कर इन पर एनालिसिस कर पाओ. इनका वो नेचर ही नहीं कि आप इनको छुओ, इनको एक साइड रखो कैद करके एंड देन यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन दीज. अब साइंस को क्या चाहिए, समथिंग दैट इट कैन सी इन द लेबोरेटरी. साइंस विल बिलीव इन दैट
और समथिंग दैट कैन बी प्रूवन.
बस वही चीज वो मानेगी. राइट, यस और नो? राइट, तो कर्म तो उसके पूरे परव्यू से बाहर हो गए, कर्म की तो अब वो बात ही नहीं करेगी. वो बोलेगी जिसको करना होता है वो कर लेता है, ये सब बहाने के मेरा बैड लक है, मेरा गुड लक है. साइंस बोलेगी ये कुछ नहीं होता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. राइट, तो इफ विल ट्राई इनफ इट विल हैपन. दैट इज व्हाट द साइंस विल ऑलवेज हैव टू से. करेक्ट, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. जो कुछ भी आपके इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनसे हम कार्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं. कर्मों का बंध हमारे होता है, उस कर्म के बल से रिजल्ट हमको मिलते हैं. करेक्ट, कर्म के बल से हमको फिर कर्म का उदय आता है. द प्रॉब्लम बताओ भी कि आपके पास कर्म का उदय आएगा, लेकिन कब आएगा, कि कर्म का उदय आबाधा काल के बाद आता है. मतलब तुरंत नहीं आता, थोड़ा टाइम रुक कर आता है. तो मैं जब पाप कर रहा था उस टाइम जो कर्म बंधा, वो कर्म का उदय पाप करते टाइम नहीं आया, बट लेटर ऑन जब मैं वहां जाके आराम से बैठ गया और मैं लोगों की मदद करके अच्छा काम कर रहा था, तब अचानक से वो कर्म का उदय आ गया. यस और नो? राइट, तो अब साइंस के लिए बेसिक डाउट क्या रहेगा, कि साइंस तो यही कंक्लूड करेगी ना कि यू कैन नॉट मेक अ रूल अच्छा करने से अच्छा होता ही है. नहीं, अच्छा करने वालों के साथ भी बुरा हो जाता है. होता कि नहीं होता, ये बोलते लोग कि नहीं बोलते?
हाँ.
राइट, आप इतना दान देते हो, आप इतना मंदिर जाते हो, देखो आपके साथ भी, आपने देखो लाइफ टाइम कहीं बाहर कुछ नहीं खाया, फिर भी आपको ये हो गया ना ये वाला रोग. आपने तो कुछ भी नहीं किया था, आपका लीवर कैसे खराब हो सकता है? यू नेवर ड्रिंक, आपकी किडनी में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है? आप तो दीज क्वेश्चन कम. राइट, एंड फिर लोग कहते कोई मतलब नहीं है सब करने का, भैया जिसका होना होता है हो जाता है,
ये भी कहते हैं ना कि जब भी हमने बुरे भाव किए, जो भी भाव किए उसके अनुसार परिणाम वही समय पे मिल जाता है. भले ही हमें कर्म का वो उदय बाद में आए, पर जो जैसे पाप के परिणाम किए तो उसका फल वही टाइम पे मिल जाता है, ऐसा भी आता है ना
प्रकार से. तो हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको जो चीजें हैं. एक तो फल वो बाहर का, जैसे कि लाइक से जो हम कहते हैं एक अपराधी है, उसने कोई अपराध किया, सो ही डिड समथिंग रियली बैड. ठीक है, एंड बाद में उसको रियलाइज हुआ उसने क्या किया. ठीक है, अभी तक उसका प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, उसका केस चल रहा है, द कोर्ट इज रेड टू गिव हिम सम पनिशमेंट. ठीक है, कि उसको जेल होगी, ही विल सेंटेंस टू डेथ. लेकिन उसके पहले ही व्हेन ही रियलाइजेस, व्हेन ही वाज ड्रंक ही डिड इट. जैसे कि कई बार हमसे हो जाता है, वी आर ड्राइविंग द कार एंड समहाउ यदि कुछ हो जाए, कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, छोटा सा भी जानवर, एंड समहाउ यदि कुछ हो जाए तो व्हाट हैपेंस, कि वो मर गया. लेट्स से गॉड फॉरबिड इट नेवर हैपेंस, शुड नेवर हैपेंस, बट समथिंग एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म लाइक एक ग्लेरी रोड क्रॉस कर देती, एक हमारी स्पीड इतनी थी वी कुड नॉट कंट्रोल इट. ठीक है, तो वहां हिंसा हो गई, हुई कि नहीं हुई हिंसा? हेलो,
हाँ हुई.
हो गई, तुरंत हो गई, तो उसका आपको पाप पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उसका कर्म आएगा कि नहीं आएगा? उसका उदय में आएगा, तब नहीं आएगा, तुरंत नहीं आएगा। बट एट दैट सेम टाइम आपको ग्रीट तो हो जाती है यार, क्या हो गया, आपकी तुरंत स्पीड एकदम स्लो हो जाती है, आप तुरंत बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हो, व्हाट वाज आई डूइंग, व्हाट वाज आई थिंकिंग, थोड़ा सा इधर से हो जाता है, थोड़ा सा देखकर चल लेते। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आती है इनर एक कॉन्शियसनेस जो आती है वो उसी टाइम आती है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको जो फिजिकल कर्म का उदय है, ही अपराधी को अपराध बोध हो जाए, ही रियलाइजेस दैट ही डिड मिस्टेक, उसने कमिट कर दिया, राइट उसने कर दिया कि ठीक है हाँ ये वाला जो क्राइम है आई डिड इट, एडमिट कर दिया एंड ही रिग्रेटेड इट, वो उसका प्रेजेंट टाइम का उसका पनिशमेंट है, बट दैट इज नॉट इन नो वे, वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि उसको फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। हाँ प्रेजेंट उसके आलोचना से, उसके प्रत्याख्यान से, जो उसकी जेल की टर्म है वो कम हो सकती है उसके बिहेवियर को देखकर, जो होता है रियल वर्ल्ड में, राइट किसी कैदी का बिहेवियर बहुत अच्छा हो, डिसिप्लिन से रहे, तो उसकी टर्म को कम कर दिया जाता है, होता है राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द जेल्स एज वेल, इसी को 15 इयर्स इयर्स में, तो इसको बोलते अपकर्षण हो गया, तो जो फिजिकल कर्म का उदय उसमें उदय कम हो सकता है बढ़ सकता है, दैट विल हैपन जो रियल वर्ल्ड में भी देखा जाता है। बट जो आप बोल रहे हो, तो जैसे मैं क्रोध कर रहा हूं, तो क्रोध करने पर मुझे जो कर्म बन रहा है वो तो बाद में बन रहा है, बट मैं आकुलता तो अभी भोग रहा हूं ना क्रोध की, तो मुझे जो क्रोध आकुलता का है वो रियल टाइम फल तो मिल ही रहा है कि मैं वर्तमान में क्रोध कोई हैप्पी होके नहीं करता है, फ्रस्ट्रेट होकर करता है, डिसअपॉइंट होकर करता है, इतनी बार समझाया आपको समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्रोध। तो नाउ जब मैं गुस्सा कर रहा हूँ तब मैं कुछ परेशान हूँ, दैट इज जब आप वो परिणाम करते हो आप उस परिणाम को अनुभवते हो, आप उस परिणाम से दुखी होते हो, इसलिए पंडित दौलत राम जी बोल आए हैं रागादी प्रगट जे दुख दें, जो प्रेजेंट में दुख देने वाले हैं उनको तो दुख नहीं मानता, उनको तो कर्तव्य मानता है। तो अपने बच्चों की परवरिश में हम बहुत परेशान होते हैं, उनके एडमिशंस में वो कई बार हमारी बात नहीं सुनते, हमें कॉन्स्टेंटली फियर रहता है कि गलत नहीं चले जाए, ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस, हम सबको देखते हैं, और वो हमको प्रेजेंट में परेशान रखता है, लेकिन हम उसको क्या नाम दे देते, तो हमारी जिम्मेदारी है, ये तो हमारा कर्तव्य है। तो ये आश्रय बंध तत्व संबंधी भूल है कि जो प्रगट में दुख देने वाला है वो उसको कर्तव्य मानकर उसी को करने में मानता है कि यार ये तो हमारा काम है। तो ये जो दुख का कारण है प्रेजेंट में, ये जो आप बोल रहे हो ये है कि हमने गुस्सा किया तो तुरंत गुस्से का हमको उस समय फल क्या मिल गया कि हम आकुलित हुए, लेकिन जिसका मोह तीव्र है वो गुस्सा करके फिर खुश होता है कि मैंने उनको अच्छा सुना दिया, लाइक यू नो आई गेव हिम अ गुड फायरिंग टुडे सो दैट आप वो कल से अच्छे से काम करेंगे, अरे गेटिंग इट, तो वो उसको कर्तव्य मान के करता है, तो वो परेशान हो रहा है, बट इवन दैट परेशान होना भी वो परेशान होने जैसा नहीं लग रहा है। तो जो प्रेजेंट में आपको तुरंत परेशान होकर कर्म का फल मिल जाता है, वो जिन लोगों का मोह तीव्र है उनको वो पनिशमेंट नहीं लगती है, एंड दैट इज बाय द कार्मिक पनिशमेंट, द फिजिकल पनिशमेंट दैट इज नेसेसरी, वो रहेगी वस्तु व्यवस्था में, और उसी को रियल कर्म का उदय बोला जाएगा।
तो आपका कहना ये है कि अगर आकुलता हुई और वर्तमान में जैसे क्रोध किया, वर्तमान में आकुलता हुई तो उसको अपन फल नहीं बोलेंगे, वो जैसे उसका खाली एक्सपीरियंस ही बोलेंगे,
वो फल नहीं हुआ, वो कर्म का फल, तो जब कर्म बंधेगा और बाद में उदय में आएगा वो कर्म फल होगा, वर्तमान में
तो
वर्तमान में जो हो रहा है वो हमारे परिणामों की आकुलता का दुख है, तो वो आश्रम हमें दुखी कर रहा है, कर्म का उदय हमें दुखी नहीं कर सकता, वो बाद में कल को कर्म का उदय भी आएगा, लेकिन यदि आप वर्तमान के परिणामों को संभालना सीख जाओगे, तो देखो आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो स्वाध्यायी होते होंगे और उनको बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, बट वो कितनी शांति से उस उदय को झेलते हैं, राइट तो ना वो कर्म का उदय तो आया पुराने परिणामों का जो फिजिकल कर्म बांधा था, लेकिन ना वो आज अपने परिणामों को संभाल पाते हैं, तो अपने परिणामों से दुखी नहीं होते अब वो, तो वो आकुलित नहीं होते आकुलता के सारे कारण होने के बावजूद। तो वो ये जो भैया बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि रियल कर्म का फल तो हमको प्रेजेंट परिणाम में मिलता है, तो उसको कर्म का फल नहीं कहते, वो कर्म की वेदना कहते हैं। तो कर्म की वेदना का रिलेशन कर्म के उदय से नहीं है, वेदना का रिलेशन आपके राग मोह द्वेष परिणाम से है, राइट। किसी को छोटा सा कट लग जाता है बच्चे को, थोड़ा सा वो एकदम एक डॉट ब्लड की हल्की सी आती है और बच्चा बहुत रोने लगता है कि मुझे लग गई लग गई लग गई। और आप लोग को ऐसा होता है तो आपको कुछ नहीं, चलो ठीक है हम बैंडेज लगा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। यू नेवर क्राई डू यू, हम नहीं रोते कभी भी, क्यों? क्योंकि उसके राग मोह का लेवल अलग है बच्चे का। एंड नाउ आप समझ गए कि बॉडी में छोटी मोटी तो होती रहती है इतनी चीजें, कहां तक हम देखेंगे इसको, राइट। तो आप उस कंफर्ट जोन पर आ गए हो, तो आपने वो वाली आकुलता को कम कर लिया क्योंकि आपने अपने ब्रेन को वैसे फॉर्म कर लिया है।
तो फिर वो आपने जो वर्ड यूज किया ना कि वो कर्म ना फल नहीं पर कर्म नु वेदवु छे, तो फिर
हाँ।
ना भी क्यों बोलना, वो तो अपने परिणाम का हुआ, उसमें तो कुछ कर्म अभी तक नहीं आया, परिणाम का एक्सपीरियंस जो अपन भाव भाव भाषण होता है वो होता है,
करेक्ट। रियल में जीव का ताल्लुका, जीव का पूरा संबंध उसके परिणामों से है,
तो फिर
बाहर की से कुछ नहीं है। लेकिन जिनका मोह तीव्र है उनका बाहर की परिस्थिति से ही इन्फ्लुएंस चलता है। तो आपको इतना ज्ञान है तो आपको यदि बहुत तेज वेदना है आप भेद ज्ञान करके समाधान कर लोगे, लेकिन सामने यदि कोई दूसरा मनुष्य है उसके बहुत तेज पेट दुख रहा है, आप उसके पास जाके उससे बोलोगे देखो ये कुछ भी नहीं है तुम आत्मा हो, तो उसको गुस्सा आएगा उस बात से। तो जिसके समाधान जिसके तत्व ज्ञान नहीं है उसको कर्म ही रिमोट कंट्रोल है, कर्म चलाता है उसको, और जिनके पास तत्व ज्ञान है उनके पास रिमोट अपने हाथ में है, लेकिन वो अपने परिणामों को वैसे बना सकते हैं। और वो भी जब कर्म का तीव्र उदय नहीं हो तब, कर्म के तीव्र उदय में हम अपने परिणामों को खुद हम भी अच्छे अच्छे तत्वज्ञानी कर्म के तीव्र उदय में बह जाते हैं, राइट। तो नदी का फ्लो यदि तेज है तो फिर तैरना बहुत मुश्किल है। तो कर्म की पोटेंट को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, कर्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट रियलिटी इज कर्म कितना भी स्ट्रॉन्ग हो आपको सुख दुख की वेदना आपके राग द्वेष के परिणाम के हिसाब से ही होगी, दैट इज द रियलिटी। तो इधर हम राग द्वेष के परिणाम को कंट्रोल करना सीख जाएं, उससे भेद ज्ञान करना सीख जाएं, या फिर हम कर्म के उदय में सबमिट हो जाएं, जब वो आएगा हम वैसा विचरने लगे तो दिक्कत हो जाती है उससे, ठीक है। तो दो बातें आई लव क्लैरिफाई, ठीक है, दो चीजें चल रही एक साथ, आपके पास एक बॉडी मिली हुई और आपके पास एक पूरा फैमिली है घर है सब कुछ है, राइट। ये सारे कहलाते हैं नो कर्म, इन सबको कहते हैं नो कर्म, ये रिजल्टेंट है। ये नो कर्म आपको क्यों मिला है, क्योंकि आपने अघातीय कर्म बांधे थे, तो नो कर्म अघातीय कर्म के उदय में मिलते हैं। अघातीय कर्म क्यों बंधे थे, अघातीय कर्म इसलिए बंधे थे क्योंकि आपने राग द्वेष और मोह के परिणाम किए थे। राग द्वेष और मोह के परिणाम क्यों होते हैं, वो घातीय कर्म के उदय में तत्व ज्ञान के अभाव में होते हैं, ठीक है, पक्का। तो देखो जो रियल काम हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं राग द्वेष मोह, इससे घातीय कर्म भी बन रहे हैं और अघातीय कर्म भी बन रहे हैं। इनमें से जो अघातीय कर्म है ये हमारे आसपास की दुनिया को फॉर्म कर रहे हैं, और जो घातीय कर्म है वो हमारे परिणामों को फॉर्म कर रहे हैं जिससे फिर नए घातीय और अघातीय कर्म आएंगे। Are you getting the cycle? Hello?
हाँ,
आपको ये समझ में आ रही है चीजें, इतनी सारी साइकिल सब साथ में एल्गोरिदम रन होंगी, ठीक है। अब देखो जो अघातीय कर्म का उदय है उसका पूरा लेना देना बाहर के शरीर से और बाहर की फैमिली, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका घर, इन द सिटी यू विल बी लिविंग, इन द कंट्री विल बी लिविंग, जो कुछ भी आपके कैसे फ्रेंड्स होंगे, क्या सोसाइटल स्टेटस होगा, कितनी ख्याति होगी, कितनी आपकी लोग पूछेंगे, यश होगा, आपकी आवाज कैसी होगी, आप अपने आप को दिखोगे कैसे, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, ये सब कुछ कौन कराएगा, ये अघातीकरण कराएगा। इसका किससे लेना देना है? बाहर के फिजिकल फॉर्म से लेना देना है। इसमें आत्मा का क्या रोल है? इसमें आत्मा को कुछ भी नहीं करने जाना। आप अपनी बॉडी को बड़ा करने के लिए, अपने हार्ट को पंप करने के लिए दिन भर में क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो कि आपका हार्ट पंप करे? कुछ भी नहीं करते। ब्लड प्रेशर अपने आप फ्लो होता है, होता है आपको। देयर इज नो अथॉरिटी दैट यू हैव इन दिस बॉडी। नाखून को बढ़ाने के लिए कुछ करते हो आप रोज?
नहीं, कुछ नहीं।
मतलब आपकी पलक को झपकाने के लिए कुछ करते हो आप?
नहीं।
श्वास लेने के लिए तो थोड़े एफर्ट डालते हो कि चलो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ये तो करते हो थोड़ा आर्टिफिशियली कि नहीं? इट ऑल हैपेंस। आप रोकना चाहोगे तो रोक नहीं पाओगे अपनी श्वास को। लोग कहते हैं कि हम श्वास रोक लेंगे तो हम मर जाएंगे, राइट? बट कोई रोकना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता खुद पे श्वास को, इसलिए लोग फांसी लगाते हैं, राइट? नहीं तो सिंपल क्यों इतने ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको जहर वहर क्यों खाते हैं लोग सुसाइड के लिए? अपने आप श्वास बंद करके बैठ जाए ना। बट इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट टू डू इट, वो ऑटोमेटिकली बॉडी कर देती है। आप रोकना चाहोगे वो फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आपके पास क्लियरली बॉडी के पास की अथॉरिटी नहीं है। तो जिस शरीर में ये आत्मा रहता है, जब वो शरीर की ही एक क्रिया को करने में ये अशक्य है, तो शरीर के बाहर की चीजों को करने में तो कोई शक्य है नहीं है, पक्का?
हाँ।
अघातीकरण के उदय में इस जीव का कोई हाथ नहीं चलेगा, फाइन?
हाँ।
व्हाटएवर इज गिवन इज गिवन। आपको जो मिल गया वो मिल गया, आप उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मेरी नाक ऐसी है, मेरा कलर ऐसा है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा घर ऐसा है, मेरी फैमिली ऐसी है। यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। जो मिल गया वो मिल गया, दैट इज अघातिया। नाउ अब काम होता है अंदर का, दैट इज घातिया कर्मों का पूरा खेल। तो ग्यारह वर्णी दर्शना वर्णी जो काम करते हैं वो सिर्फ इतना करते हैं कि वो पर्दा लगा देते हैं। तो आपको पूरी विंडो दिख रही थी अभी, अब विंडो में पर्दा आ गया तो आपको थोड़ी सी ओपनिंग दिख रही है। लेकिन जितनी दिख रही है ना ओपनिंग, वो आपकी आंखों से दिख रही है, खिड़की से नहीं दिख रही, ना पर्दे से दिख रही है। तो पर्दे से नहीं दिखता और खिड़की से नहीं दिखता। दिखता किससे है? आप जो आंखों से देख रहे हो ना खिड़की के बाहर, उससे दिखता है। सिमिलरली इंद्रियों से नहीं दिखता और ज्ञानावरण कर्म के उदय से नहीं दिखता। वो जितना ज्ञानावरण कर्म का पर्दा नहीं ढका हुआ है, जितना उसका उदय नहीं है, उतना ज्ञान खुला हुआ है। उस ज्ञान से हम जानते हैं, हम इंद्रियों से नहीं जानते, हम ज्ञानावरण कर्म के उदय में नहीं जानते। ज्ञानावरण कर्म के उदय में तो उतना तो पर्दा लगा हुआ है, जितना उदय नहीं है उतना ज्ञान खिला हुआ है, पक्का? ठीक है,
हाँ
ठीक है। तो इससे कंक्लूड ये हुआ कि जो आप जान रहे हो वो बंध का कारण नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप ज्ञान से देख रहे हो। जितना आपको दिख रहा है वो आपकी आंखों से दिख रहा है, राइट? खिड़की से नहीं दिख रहा, तो वो तो आपका खुद का है ना, यू हैव नॉट बोरोड इट फ्रॉम समथिंग। तो ऐसे जितना आप देख पा रहे हो अभी आसपास, सुन पा रहे हो, ये आपके ज्ञान ने किया है, ज्ञानावरण कर्म ने नहीं किया है। इसलिए जानना बंध का कारण नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो जो ज्ञानावरण कर्म का उदय, उससे तो बंध होता होगा कि नहीं? पर्दा जितना लगा है वो पर्दा की आंख को नहीं बिगाड़ रहा है, पर्दा लगे होने के कारण आंख पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो जितना ज्ञान प्रकट नहीं है वो ज्ञान है ही नहीं, तो उससे जो अप्रगट है उससे बंध कैसे होगा? आप इस गार्डन पर आए ही नहीं तो फिर आप यहाँ पर वाटर कैसे दोगे प्लांट को? आपको आना तो पड़ेगा। तो जो ज्ञान आया ही नहीं वो बंध का कारण कैसे हो जाएगा? वो स्पॉट पर प्रेजेंट ही नहीं है, करेक्ट? हेलो, उसी अघातीय कर्म बंध के कारण नहीं है क्योंकि उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। घातीय कर्म में ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी बंध के कारण नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक अंतराय नाम का कर्म है। अंतराय नाम का कर्म क्या करता है? सिमिलरली जैसे आपको ज्ञानावरणी कर्म देखने को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, ऐसी अंतराय कर्म आपकी शक्ति को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जितना आप काम करोगे वो आप अपनी शक्ति से करोगे, वो आपकी शक्ति है, लेकिन जितना नहीं कर पा रहे हो उतनी वो शक्ति प्रगट ही नहीं है। तो जो प्रगट नहीं है वो बंध का कारण नहीं हो सकता। और जो प्रकट है वो तो आत्मा की है, तो आत्मा की है तो वो बंध का कारण कैसे होगी? करेक्ट। तो देखो, आठ कर्म में से सात कर्म तो बंध के कारण है ही नहीं, उनके कारण बंध नहीं हो रहा, मतलब उनके कारण कोई अपराध भी नहीं हो रहा, उनके कारण कोई गलत काम हो रहा होता तो बंध होता। तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में कोई गलत काम नहीं होता, ज्ञान होता है। दर्शनावर्णी कर्म के उदय में कोई गलत काम नहीं होता, आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान होता है। अंतराय कर्म के उदय में कोई गलत काम नहीं होता, आत्मा के वीर्य का आंशिक उदय होता है। ठीक है, सूक्ष्मत्व जो गुण है, प्रतिजीवी गुण, अग्रु लघुत्व नाम का जो गुण है, अव्याबाधत्व नाम का जो गुण है, ये सारे गुण, ये प्रतिजीवी गुण है जो अघातीय कर्म के उदय में इनका घात रहता है। तो ये वाले गुण तो प्रकट ही नहीं है अभी हमको, तो इनसे बंध कैसे होगा? तो इनसे भी बंध नहीं होता। तो बचा कौन? एक मोहिनी नाम का कर्म बाकी रहा। इस मोहिनी कर्म के उदय में तीन चीजें होती है, मोह यानी कि दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व, और एक राग और एक द्वेष। मोह राग द्वेष, इस राग द्वेष यानी चारित्र मोहिनी है। ठीक है, अब इस मोहिनी पूरा काम बहुत वाइड स्प्रेड है, इसका एम्पायर बहुत बड़ा है। तो दो डिवीजन होंगे इसके, एक डिवीजन जो ज्ञान और दर्शन और अंतराय को गाइड करेगा, उनके इंटेंट गाइड करेगा, विच इज मोह। ठीक है, तो आपके सामने एक बच्चा जो नेबर का है वो बेचारा भूखा पड़ा हुआ है और एकदम ठंड में भी पड़ा हुआ है, या फिर आपने उसको क्या बोलते हैं कहीं पर देखा होगा, आपने उसको कहीं पर देखा होगा, और एक जगह आपका ही बच्चा पड़ा हुआ है, राइट? तो उन दोनों बच्चों की कंडीशन इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट आप अपने बच्चे के लिए बिल्कुल परेशान हो जाओगे। आप यदि बैठे हुए तो आप खड़े हो जाओगे बट बच्चे को बिठा लोगे। आपके पास एक ही ओढ़ने की जग चादर है, आप पहले बच्चे की, अपने बच्चे की गर्मी ठंडी को दूर करोगे, फिर आप अपना सोचोगे। आपके पास लिमिटेड खाने को है आज, तो आप पहले उसको खिलाओगे फिर खाओगे। विल डू दैट, राइट? करोगे कि नहीं करोगे?
करेंगे,
राइट? लेकिन वही काम दूसरे का बच्चे का होगा तो हम नहीं करेंगे। तो पहले हमको इंटेंट मिलता है, वो मिथ्यात्व देता है, मोह देता है। ये ज्ञान और दर्शन को हमें लगाना तो कहाँ लगाना? ठीक है, वो इंटेंट हमको कौन देगा? मिथ्यात्व देगा कि आपको क्या करना है, कि मुझे बॉडी को फिट रखना है, आई शुड बी ब्यूटीफुल, आई शुड बी हेल्दी, आई शुड बी हैप्पी, मैं एकदम, मेरी बॉडी त्वचा ग्लो करनी चाहिए, मैं एकदम यू नो न्यूट्रिशियस, जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे हम, जितने ज्यादा बॉडी में कॉस्मेटिक्स का यूज करेंगे हम उतना ग्लो करेंगे। सो एवरीथिंग, क्योंकि आपके मिथ्यात्व से आपका इंटेंट क्या है कि बॉडी इज यू, तो आपका पूरा ज्ञान दर्शन कहाँ पर लगा हुआ है? पूरा अंतराय के कारण जो वीर्य है वो कहाँ लगा हुआ है? योर ऑल्टर ईगो, जहां पर आपने सोचा कि आप हो वहां पर लगा हुआ है, राइट? करेक्ट, दैट इज द ड्राइवर। ड्राइवर आपको वहां तक लेकर आया कि आप बॉडी के बारे में सोचो, बट अब आप सोचोगे तो क्या सोचोगे? सो चारित्र कम्स इनटू प्ले। तो चारित्र वहां बताते कि राग करें कि द्वेष करें, यार मेरी बॉडी अच्छी क्यों नहीं है, यार उसकी कितनी अच्छी है, वहां पर भी जैसे वैसे क्या कर सकते हैं हम, वो इतने अच्छे से गा लेता है, मैं भी शायद रियाज करूं तो गा पाऊं। तो ये सारे काम जो होंगे वो इंटेंट किसका है? मिथ्यात्व का, कि उसने आपको एक बुरी कहानी में डाल दिया कि यू आर दिस बॉडी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ये एक रॉन्ग स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, एक गलत कहानी आपको यहाँ से दी गई, और आपने फिर इस पूरी गलत कहानी के इर्द गिर्द ही राग द्वेष करना शुरू हो गया, राइट? हेलो,
हाँ,
देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चों को हम एक गेम देते हैं, राइट? कोई भी गेम बच्चे खेलते हैं, तो गेम में क्या होता है, दे डिजाइन देयर ओन वर्ल्ड, वहां पर वो रेस करते हैं। एंड तो पहले उनको क्या मानना होता है कि उनको एक कैरेक्टर दिया जाता है कि आप ये वाले ड्राइवर हो, वो अपना नाम भी सेट कर सकते हैं उस पीएस में, राइट? आपने देखा प्ले स्टेशन में बच्चे खेलते हैं, यस और नो, आपने देखा है उसको? हेलो,
हाँ मैंने
बच्चों को नहीं देखा होगा, ओके जो भी है, तो बच्चों को
देखा होगा, मैंने नहीं देखा है।
हाँ, तो बच्चों को एक कैरेक्टर मिलता है, दे बिकम द हीरो, वो अपना पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके पास कौन सी कार होगी, किस कलर की होगी, क्या नाइट कितने नाइट्रोज होंगे, या उनके पास कौन सी गन्स होंगी, ये सारी चीजें आजकल होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, हम एक रॉन्ग स्टोरी बच्चे को देते हैं कि यार आप ये जो दिख रहा है ना, ये रेड कलर का जो बॉय है, ही इज यू, ये आप हो, ठीक है। एंड देन आपको इस गेम में क्या करना है, आपको ये बचाकर आपको वहां तक जाना, वो वाले मिशन को अकम्प्लिश करना है, राइट। तो वन फर्स्ट स्टेज क्या है कि आप पहले उसको बिलीव कराते हो कि हु आर यू, आप कौन हो, आपका क्या काम है, आपको क्या करना है, यू हैव बीन गिवन दैट, ठीक है। एंड उसके बाद अब बच्चा स्टार्ट होता है, तो अब वो देखो कोई एनिमी आएगा तो वहां पर साइड हो जाएगा, उससे लड़ने लगेगा, उससे फाइट करेगा, उसको यदि मारना हुआ तो मारना रहता है, उससे बचना हुआ तो बचना रहता है। अब सारे राग द्वेष स्टार्ट होंगे, उसके पहले स्टार्ट नहीं होंगे जब तक उसमें बताएंगे नहीं, जब तक वो अपने फ्रेंड को देख रहा है, जैसे कि अभी फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप है स्टार्टेड, राइट, राइट। तो अब लोग तो पूरे पागल हो गए हैं, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। तो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि अर्जेंटीना जीता कि कौन जीता, राइट। तो आपके राग द्वेष स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि आपके मुंह ने अटैचमेंट नहीं किया है, बट इंडिया पाकिस्तान का मैच होता लेट्स से इन क्रिकेट, तो ऑटोमेटिकली यू नो यू स्टार्ट, यार क्यों आउट हो गया सचिन जल्दी, वाई दे आर नॉट डूइंग बॉलिंग वेल। अब आप बैठे बैठे वहां से स्टेडियम को बता रहे हो कि उसको खेलना कैसे चाहिए, यार इसको इसको द कैप्टन शुड नाउ सेंड द पेसर नाउ, यार ये क्या कर रहा है, इसने स्पिनर्स पर से लगा दिए, पागल हो गया है धोनी। वी यूज दिस, वी डू दिस, राइट। पहले आपको पहले एक इंटेंट मिलता है कि यार इंडिया मेरी टीम है और अर्जेंटीना इज व्हाट आई एम फॉलोइंग, एंड देन आपके राग द्वेष स्टार्ट्स देयर, ये क्यों आउट हो रहे हैं जल्दी जल्दी, लोग तो सही से खेलते नहीं आते, ये कैप्टन पागल हो गया आज, उसने कैच क्यों छोड़ दिया, एज इफ ही इज लिसनिंग डायरेक्टली फ्रॉम अस एंड ही इज गोइंग टू करेक्ट इट। वो कुछ करने नहीं वाला, उसको पता भी नहीं आप अपने घर पर क्या बोल रहे हो, लेकिन आपने वो इमेजिन जो किया है, जो मोह ने आपको एक पर्दा दिया है। सिमिलरली हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं आजकल, बेटा देखो यू गेट अ गुड कॉलेज, यू गेट अ गुड जॉब, लाइफ इज सॉर्टेड। तो पहले हमने बच्चों को बोला बेटा आप ये हो, यू शुड डू दिस, इसके बाद आपको जॉब मिलेगी, जॉब मिलती है तो अकम्प्लिश दिस। तो सिमिलरली जैसे वीडियो गेम में उसको एक मिशन मिला था, उसको एक आइडेंटिटी मिली थी, यू गेव हिम द आइडेंटिटी, आपने बोला बेटा पहले आपको सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, तो यू गॉट दैट आइडेंटिटी, एंड आफ्टर दैट आइडेंटिटी नाउ ही हैज अ मिशन, आई हैव टू सेव लाइफ, आई हैव टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस, आई हैव टू डू ऑडिट। तो उसको अब वो मिल गया, तो अब वो उसके बाहर लाइफ में सोच ही नहीं पाता। आर यू गेटिंग इट? हेलो, राइट। तो मोह इज द ड्राइविंग फोर्स, राग द्वेष आर रिजल्टेंट। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो मोह को तोड़ने की होती है, कि पहले आप यू ब्रेक दैट वॉल जो कि आपको इस वीडियो गेम के अंदर घुसा कर रखी हुई है, आप एडिक्टेड जिससे हो गए हो, यू ब्रेक दैट वॉल जो आपको इस बॉडी और फैमिली के अंदर घुमा कर रखी है। नहीं, यू आर सोल, आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। सो पहले हम मोह पर एक हथौड़ा मारते हैं तो हमारा राग द्वेष ढीला पड़ता है। वो कब होता है? जब जिनेंद्र देव के वचनामृत, उनके तत्व ज्ञान की समझ हमको पड़ती है तब। जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक मोह इज सो स्ट्रॉन्ग कि तब तक अकेली मोह और राग द्वेष आपको दुखी नहीं करते, वो अघातिया कर्मों के उदय जो कि आपको छू भी नहीं सकते, जिनके और आपके बीच में अत्यंत अभाव है, वो भी आपको इंटिमिडेट कर देते हैं, वो भी आपको डरा देते हैं मोह की तीव्रता में। बात समझ में आई? तो सिंपल आंसर जो आप लोग का क्वेश्चन था वो ये था कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कर्म के उदय में कुछ होता है, मोह राग द्वेष से हम वेदना को फील करते हैं ना, कि नहीं, तीव्र मोह राग द्वेष में क्या होता है, जैसे कि इंडिया हारेगी तो इंडिया के हारने से आप दुखी होगे कि नहीं होगे, थोड़े भी आप फॉलो करते हो आपको बुरा लगेगा, क्या यार वर्ल्ड कप हार गई, पाकिस्तान से हार गई, श्रीलंका जैसी टीम से हार गई, बांग्लादेश से हार गई, फील फील बैड, जबकि बैड होने का कोई कारण वहां नहीं है, बट आप क्यों परेशान हो रहे हो, तो बोला तो यही जाएगा कि वो टीम हार गई। ऐसे आप इस बॉडी के भी परेशान नहीं हो, आप इस कर्म के उदय में परेशान नहीं हो, लेकिन रात की तीव्रता इतनी है, मोह की तीव्रता इतनी है, बोला यही जाएगा कि उसको इतना ज्यादा परेशानी आ गई, ही गॉट शॉक, वो झेल नहीं पाया, ही गॉट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक उसके कारण आया है क्या, इतना सारा कुछ हो गया? वो तो अघातिया कर्म के उदय में हुआ, यहाँ क्या हुआ जिससे वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया? वो प्रेजेंट का मोह राग द्वेष है, ठीक है? हेलो, सॉरी मैंने बहुत टाइम एक्सटेंड कर दिया आप लोगों का, बट हम जो बात कर रहे थे हम उससे थोड़ा डेविएट हुए हैं। हमारी बात ये थी कि जो रियल लाइफ हम जिसमें जी रहे हैं उसमें हमारे एक्शंस का और कर्म के उदय का मिसमैच है। तो कोई पाप करता है और हमें दिखता है उसके पुण्य का उदय है, कोई पुण्य कार्य करता है और हमें दिखता है कि उसके पाप का उदय है, क्योंकि पाप और पुण्य रियल टाइम पर वर्क नहीं करते, उनका बंद होता है, फिर उनका आबाधा काल होता है और फिर वो अपने काल के उदय में आते हैं, राइट? तो इससे मेजॉरिटी लोगों को बहुत शंका होती है कि धर्म करने से कुछ होता भी है कि नहीं होता, ये कोई फालतू की चीजें तो नहीं है। तो उसके लिए पंडित दौलतराम जी ने बोला है पहले हमें तत्वों का निर्णय करना है, तो इसलिए जिन वच में शंका न धार। तो जैसा आपने पहले बताया कि दुनिया में बाकी सब इमटीरियल है अप्रयोजन भूत, उसको छोड़ दो, पहले प्रयोजन भूत का नक्की करो, उसका हम एक बार नक्की करते हैं तो सारी चीजें फिर पूरी स्टोरी फिट बैठने लगती है और हमें फिर जीवन वचन में शंका नहीं होती है, ठीक है? तो आप यदि लोक में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ डाउट हो जाए धर्म पर, क्योंकि लॉजिक हर जगह है बट वो लॉजिकल नहीं है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सिर्फ उतना दिख रहा है जितना उनको दिखाया जा रहा है कर्म के द्वारा। द मोमेंट दे विल सी कि उनके पाप का पाप कर्म का फल पाप ही है, पुण्य नहीं है, जिस दिन वो ये समझ जाएंगे उस दिन वो समझेगा उनके जो तर्क थे, उनके जो लोगों को लगता है कि वो बेईमानी कर लेते हैं और वो उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं लेकिन चीट, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे पुण्य और हीन हो रहा है, पाप तो बन ही रहा है, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सम्यक दृष्टि जी। ये पहला उसका मार्ग होता है कि वह जिनेन्द्र देव के उपदिष्ट तत्व ज्ञान में कभी शंका नहीं करता, लेकिन कब? जब उसने पहले बहुत अच्छे से उसका विचार किया हो और उसको पूरा एनालाइज किया हो, फिर उसने विश्वास किया और फिर अब उसको शंका नहीं होती, ठीक है?
हाँ ठीक है,
ओके। क्योंकि आप लोग इस पर सोचिएगा, हम नेक्स्ट क्लास पर इस पर चर्चा करके इससे जो रिलेटेड नेक्स्ट आएगा आकांक्षा, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? आप भी इस पर सोचिएगा, यदि आपके कोई सजेशन या इस पर कुछ और व्यूज हो तो हम उन पर डिस्कशन कर सकते हैं। बट कर्म के बंध का कारण सिर्फ मोह, वो ड्राइविंग फोर्स है, और राग द्वेष उसके रिजल्टेंट्स हैं। ये दो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का पूरा खेल है, ठीक है?
एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया थे वो, से वो वीडियो गेम्स के, वो प्ले स्टेशन के वो, हाँ अभी
पूरा हमको पहले एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि मैं ये हूँ और उसके बाद राग द्वेष स्टार्ट होगा। विदाउट दैट राग द्वेष उस विषय में होता ही नहीं जिस विषय की हमको जानकारी ना हो,
हाँ,
हमारा इंटरेस्ट ना हो, पहले आप इंटरेस्ट लोगे एंड देन कुछ होगा। तो कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई और सारे साइंटिस्ट लोग जश्न मना रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट, राइट?
ये जो छह ढाला की जो कुछ बात है ये सब अप्रतिभूत की बात है, जिसको अभी तक कुछ ज्ञानी नहीं है, मैंने आप ये वाला ज्ञान, तो उनको जो भी हम ऐसे बोलते हैं कि जैन फिलोसॉफी लॉजिकल है, सब न्याय तर्क से समझा सकते हैं, तो उन लोगों को समझना है तो फिर ये ऐसी बात है, नेचुरली इट्स गोइंग टू टर्न देम अवे बिकॉज देर इज नो आंसर एंड यू टेक इट एज इट इज, जीन वचन ने बोला है
तो वो करेक्ट करेक्ट। तो ये एज इट इज नहीं लेना है हमको, एज इट इज बिल्कुल भी नहीं लेना है, यही हमारे इस पे डिस्कशन नहीं कर पाए हैं जिनेन्द्र देव के। ये क्वेश्चन मेरा अगला यही है इसके बाद कि जिनेन्द्र देव की बात हम क्यों माने, वाई शुड आई टेक इट एज ऑन अ फेस वैल्यू, मैं क्यों मानू जिनेन्द्र देव ने ऐसा कैसे बोला, हाउ इज इट लॉजिकल, ठीक है? यही आपका क्वेश्चन, तो जब लॉजिक ही नहीं लो, इट इज रिटन इन द बुक, जैसा बुक बोलती वैसे ही मानना पड़ेगा, ये जैनिज्म का वे नहीं है, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे,
जैसे ये हाँ जी नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, मगर ये बात ये प्रश्न मुझे ज़्यादा लोग पूछते भी है और मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, मगर जैसे यू नो जैसे अपने कंदमूल नहीं खाना पानी में वगैरह जैन फिलोसॉफी में तो पहले से था, तो अभी लोग एवरीबडी थिंक्स दैट बिकॉज सर्वज्ञ ने बोला तो अभी हमको विश्वास आता है कि अगर इवन इफ वी कांट सी कर्मिक पार्टिकल सर्वज्ञ ने बोला है तो है, क्योंकि जैसे पानी में जीव था वो उन्होंने बोला था, लोगों ने माना नहीं था मगर था, तो वही हिसाब अगर ये जैन भूगोल वाला प्रश्न है ना वो हम आंसर नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि दिखता तो है पृथ्वी गोल है, तो अभी क्या बोलेंगे चंद्रमा के ऊपर जाएंगे पृथ्वी तो गोल दिखती है, व्हाट इज द आंसर?
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सो वी डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ये वाला क्वेश्चन है आप सब भी सोचिएगा, हम चंद्रमा तक पहुंच कर वहां से पृथ्वी गोल तो दिख रही है, व्हाट इज द आंसर? That's a valid question.
इसलिए नेक्स्ट टाइम सबको आना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास.
बट ये जो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है जो वाले भी क्वेश्चन है इन पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बट डिस्क्रिशन इसमें ऑलवेज रहेगा क्योंकि पहले साइंस ही सॉर्टेड नहीं है, हम इस पर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? सो देट वी नो कि हम सर्वज्ञ देव के वचनों पर क्यों विश्वास करें, क्यों नहीं करें, यदि नहीं करना है तो ठीक है. और भी कोई क्वेश्चन रहेंगे विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, आप लोग सोच कर आइएगा, बट ये निशंकित अंग फाउंडेशन है, निशंकित होगा तो बाकी के आगे के सात अंग चलेंगे, नहीं तो एक भी अंग नहीं चल पाएगा, इसलिए इसका नंबर पहला है, दैट्स द फाउंडेशन, ठीक है? चलिए अभी जिन वाणी स्तुति करते हैं. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार उसके लिए चिन वाणी मां को नौ बार नमस्कार.